संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे धाम। आचार्य कुंद कुंद देव का ग्रंथाधिराज समय सार की 12वीं गाथा पर चर्चा करनी है। उसके पहले 11 गाथाओं में क्या कहा है, थोड़ा संक्षेप में उस पर प्रकाश डालते हैं, जिससे हमें पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं। मंगलाचरण के तत्काल बाद आचार्य देव ने एक बात कही थी कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है, और जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वह स्वसमय है। दूसरी गाथा में ये बात कही थी कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का अर्थ क्या, कि पुद्गल कर्म के उदय से जो जो चीजें हमें प्राप्त हुई हैं उनमें अपनापन स्थापित करने का नाम है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। तो क्या मिला है कर्म के उदय से हमें? तो कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक घातिया और एक अघातिया। तो अघातिया कर्मों के उदय से सिर्फ संयोग मिलते हैं, जिन्हें हम शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, नगर, देश, गांव और दुनिया, इन सबको बोलते हैं संयोग। लेकिन इनमें से किन को? जो हमें हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से प्राप्त हुए हों उनको, सबको नहीं। इन्हें नो कर्म बोलते हैं। जो अघातिया कर्म, द्रव्य कर्मों के उदय से जो संयोग प्राप्त हुए हैं उनका शास्त्रों में एक नाम है नो कर्म, जो शरीर से लेके हमारा देश तक और दुनिया तक समझ लेना चाहिए हमें। वो अनुकूल भी हो सकते हैं और प्रतिकूल भी हो सकते हैं। प्रतिकूल संयोग मिले हैं तो पाप के उदय से, अनुकूल मिले हैं तो पुण्य के उदय से। बहुत से लोगों को ऐसा भ्रम है कि पुण्य के उदय से हमको संयोग मिलते हैं, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, धन, रुपया, पैसा, तो पाप के उदय से चले जाते हैं। ये एकदम गलत बात है। सारे संयोग पुण्य के उदय से नहीं मिलते हैं। यदि अनुकूल सेवाभावी पत्नी पुण्य के उदय से मिली है तो नित्य कलह कारिणी क्यों? एक मिनट चैन से न बैठने दे, ऐसी पत्नी भी पुण्य के उदय से मिलेगी? अकेली पत्नी की बात नहीं है, पति भी हो सकते हैं। क्यों? सब प्रकार से अनुकूल हमारी सारी भोग सामग्रियों को जुटाने वाले, हमारे इशारों पर चलने वाले पति यदि हमें पुण्य कर्म के उदय से मिले हैं तो निखत्तु सातों दशनों में पारंगत बाप दादों की सारी संपत्ति बर्बाद करके चौराहे पर खड़े हो जाने वाले, क्यों? तो बाप बाप में गालियां देने वाले, मारपीट करने वाले पति भी पुण्य के उदय से मिलेंगे? तो पति पत्नी भी पुण्य पाप दोनों से ही मिलते हैं, रुपया पैसा भी। ये जो संपत्ति हमें, जो हमें अनुकूलता प्रदान करे वो तो पुण्य के उदय से। जो हर्षद मेहता को इतना पैसे मिले थे वो पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? चलो जैन साहब, कि जो सारी जिंदगी जेल में काटने का निमित्त बने, क्यों? बोलो कमल जी। तो जो हमें अनुकूलता प्रदान करें वही तो पुण्य के उदय से होंगे। जो हमारे दुखों का कारण बने भी हमें पाप के उदय से मिले, पुण्य के उदय से नहीं मिले। तो सारे संयोग पुण्य और पाप के उदय से मिलते हैं। तो अब प्रश्न खड़ा रह गया, हमारी एक सीट खाली हो गई कि जाते कैसे हैं? अभी तो हमने मान लिया था पुण्य से मिलते हैं और पाप से जाते हैं। रुपया पैसा चला गया, हमारे पाप का उदय आ गया, रुपया पैसा चला गया, क्यों? किसी पुत्र आदि चले गए, पति का वियोग हो गया, पाप का उदय आ गया, ऐसा नहीं। और वो चीज जब पुण्य और पाप दोनों से मिलते ही मिलते हैं, खुद ऐसे तो मिलते ही मिलते हैं, जाते नहीं है, तो फिर जाने का कारण क्या है? एक एक बिल्कुल पूरा काम खाली हो गया, तो कहते हैं कि पुण्य के उदय से जो संयोग मिले हों वो पुण्य खलास हो जाए तो चले जाते हैं, और पाप के उदय से जो संयोग मिले हों तो पाप खलास हो जाए तो वो चले जाते हैं। यानी ये उदय के अभाव में चले जाते हैं और उदय होने पर मिलते हैं, कहते हैं। तो अभी हम कर्म फिलोसफी भी ढंग से नहीं समझते हैं, धर्म की बात तो बहुत दूर। तो हमको ये कर्म जिनमें निमित्त हैं, तो ये जो संयोग बताए ना मैंने, ये सारे संयोग अघातिया कर्म के उदय से मिलते हैं, चाहे वो अनुकूल हों चाहे प्रतिकूल हों, क्योंकि अघातिया कर्मों में पुण्य पाप का भेद है, घातिया कर्मों में तो पुण्य पाप का भेद ही नहीं है। समझना है ना बात? एक बात इनकी बहुत अच्छी इसमें ये है कि ये हमेशा निसंतान ही मरने वाले हैं। संयोग क्या मतलब? कि ये जो मिल गए चाहे अच्छे मिले हों चाहे बुरे, लेकिन उनकी वजह से हमें भविष्य में कर्म नहीं बनेंगे। क्या हमको यदि गोरा भूरा शरीर मिल गया तो शुभ कर्म आगे बन जाएंगे, और काला कलूटा मिला तो अशुभ कर्म बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये तो आए उदय में रहे, तुमने भोगे नहीं भोगे, समय पर आगे फिरेंगे चले जाएंगे खत्म पाएंगे, इसलिए ज्यादा इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अरहंत भगवान भी इसकी चिंता नहीं करते हैं, करते अघातिया कर्म के नाश के लिए कुछ करते हैं वे, केवल ज्ञान हो जाने के बाद क्यों तब जल्दी मोक्ष में चला जाऊं इसके लिए कुछ प्रयत्न करते हैं, कि और तो मोटी प्रक्रिया से आयु कर्म समाप्त होता है तो सब अपने खत्म होकर चले जाते हैं, मोक्ष में चले जाते हैं क्यों? तो जिन संयोगों में फेरफार करने के लिए अरहंत भगवान भी कुछ करते नहीं है और कर सकते नहीं है। ऐसा नहीं कि करना तो चाहते हो कि नहीं कर करते नहीं, यदि वो करना चाहेंगे तो कर नहीं सकते, इसलिए वो दर्श में उधर को अपना माथा नहीं मारते। और उन संयोगों के फेरफार के लिए ही हमारा सारा प्रयत्न और पुरुषार्थ है। क्यों हम धर्म भी करते हैं तो उन संयोगों में फेरफार के लिए, बुरे संयोग हट जाए और अच्छे संयोग मेरे को मिल जाए, लेकिन उनसे कोई हानि लाभ है ही नहीं, क्योंकि उदय में आ गए तो उनका तो जो होना था वो हो गया, अब उसमें पीछे कुछ हो नहीं सकता है, समझे ना? और भविष्य में तुम्हारा कोई नुकसान वो करने वाले नहीं है यदि तुम राग द्वेष मोह नहीं करो तो। और राग द्वेष मोह जो होते हैं वो घातिया कर्म के उदय में होते हैं, तो अघातियों की तो छुट्टी हो गई। इस सारे संयोगों को ग्यारहवीं गाथा में असदभूत व्यवहार नय का विषय बताया है कि ये इनको अपना कहना, इनका कर्ता भोक्ता अपने को मानना, इनमें अपना स्थापित करना, इनका नाम है असदभूत व्यवहार नय। शरीर को मानना तो अनुपचरित, और बाकी स्त्री पुत्र आदि को मानना उपचरित। क्यों इसका विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, ख्याल में है ना? तो ये असदभूत वास्तव में है ही नहीं, बड़ा अकेले कहे जाते हैं, है नहीं माने स्त्री पुत्र है नहीं, ऐसा नहीं समझना, शरीर नहीं है ये मैं समझना, है नहीं माने नहीं जैसे ही हैं, इनके होने और नहीं होने का तेरे हिताहित से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए कहते हैं, तो दूसरे वो जो घातिया कर्म है वो हमारे आत्मा के भावों में फलते हैं, वो संयोगों में नहीं फलते हैं। आत्मा में मोह राग द्वेष के भाव होना, अज्ञान होना, अदर्शन होना, शक्ति की क्षीणता होना, ये सब घातिया कर्मों के उदय के कार्य हैं। देखिए 25 कसा चारित्र मोह के कार्य है, मिथ्या तो दर्शन मोहिनी का कार्य है, ज्ञान का कम होना वो ज्ञानावरणी कर्म का काम है, दर्शन का कम होना वो दर्शनावरणी कर्म का काम है और शक्ति में कमजोरी होना वो वीर अंतराय का काम है, अंतराय कर्म का काम है, मतलब समझिएगा ना। तो ये सब आत्मा में फलते हैं। तो इनमें भी जो तीन है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, उनसे आपको कोई हानि नहीं, घबराना नहीं। उसने केवल ज्ञान को रोक रखा, केवल ज्ञानावरण ही ना, आपके तो हानि नहीं है। माने जितना भी ज्ञान आप, ज्ञान आपको नहीं है, कम ज्ञान है नहीं, उससे आपको बंध नहीं होता। ये जो बड़े बड़े पंडित यहां बैठे हैं मेरे सामने, बहुत देखता हूँ लेन लगा करके, मैं इनसे एक बात कर लूँ, आप लोग नाराज नहीं हो तो, कहाँ लिखा है ये बात, इनसे बंध नहीं होता है? बोलो मत, तुम्हारी भी इज्जत रहेगी, मेरी भी रहेगी। अज्ञानाते ध्रुवो बंध हो गए अनंतान केवली, है ना, आपने मीमांसा में। अज्ञान से यदि बंद होता होता तो केवल ज्ञान कभी किसी को होता ही नहीं, क्योंकि वे तो अनंत है और उनका अज्ञान तो है ही, और उससे हम बनते। यानी जो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जो अज्ञान है, जो शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं औदयिक अज्ञान, उसको बंद का निमित्त नहीं है। फल में तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय से जो भी हमारी हालत होता है, हमने वो लिया जैसे भी क्यों ना हो जाए, कम से कम ज्ञान क्यों ना हो जाए। जो जो ज्ञान की कमी है, वो ज्ञान की कमी बंध का कारण नहीं है। जैसे दर्शनावरण से दर्शन की कमी है, वो बंध का कारण नहीं है। ऐसे अंतराय से आपको जो चीज नहीं मिली और नहीं मिली तो वो बंध का कारण नहीं है। सिर्फ मोहिनी कर्म के उदय में जो मिथ्यात 25 कसाएं हैं, राजदेश हैं, पर वो ही आगामी बंध के कारण हैं और उनकी ही परंपरा चलती है। इस 8 कर्मों में 7 कर्म तो निसंतान ही मरते हैं। पहले के जमाने में विपिन जी, एक एक माँ बाप होते थे, 15-15 बाल बच्चे होते थे, है ना, और उनकी भी पीढ़ियां नष्ट हो गई। टोडमल जी के कौन है बताओ, आज दिखता कोई टोडमल जी की पीढ़ी का कोई दिखता है? तारसमल जी, आज कुछ लोग जैन धर्म पर, भगवान महावीर पर और बुद्ध पर एक आरोप लगाते हैं, तुमने सुना करी, इनने हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। क्या नुकसान किया? कि इनने अच्छे अच्छे लोगों को समझा कर धर्मचरित दिला दिया और मूर्ख रह गए, इसलिए अच्छे लोगों की नस्ल खत्म हो गई और मूर्खों की नस्ल बची गई। एक मजाक नहीं कर रहा, जैसे आरोप लगाते, पारसमल जी से पूछो, डॉक्टर पारसमल जी बहुत बड़े विद्वान हैं, समझे ना, क्या एक आरोप लगाते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों में पढ़ा है मैंने, तो इन लोगों ने एक नुकसान किया, इसके विरुद्ध तो उन्हें लिखना पड़ा अपुत्र से गत्र नास्ती, कि बिना पुत्र को पैदा किए तुम दीक्षा लोगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, पहले जाओ शादी करो, पुत्र पैदा करो, फिर दीक्षा लेना, ऐसा उनके वेदांतों में है। अच्छी नस्ल खत्म करते जा रहे थे। माने ये जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं ना, तो महावीर का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन आदिनाथ के कुल वाले भी कोई नहीं दिख रहे, क्या मेरा मतलब समझ गया ना, क्यों कि इतने 15-15 पैदा होते थे तो भी उनके नहीं है, अब तो सवाल ही क्या है, अब तो 2 से हम 1 पे आ गए, क्या होगा, समझ जाएगा। 7 कर्म तो बिना संतान के ही मरते हैं, ये अनुपात है, मतलब 8 कर्मों में से, उनकी तो तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आज मरे और कल दूसरा दिन होने वाला है। इस संदर्भ में मैं एक बात कहता हूँ मुमुक्षुओं को जरा ध्यान देने के लिए, ये जो हम सब मूर्ख लोग हैं ना, बड़े बड़े मूर्ख, बस वो अपने घर में अकेले ही हैं, है? 80 85 वर्ष के, उसके बाद वो उनकी आंखें बंद रही तो उस घर में कोई मोक्ष पना भी कभी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे सैकड़ों मोक्ष घर में आपको गिना सकता हूँ उंगलियों पर, मुझे दिखाई देते हैं, आपको भी दिखाई देते हैं, लेकिन मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। क्या है? और वो लड़ रहे मर रहे इसके लिए, एक लिए क्या करोगे, काय के लिए कर रहे, क्या दिन की? अरे भाई, ये गुरुदेव का तत्व ज्ञान मिला है, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का सार तुम्हारे हाथ में आया है, तो अपने बच्चों में, संतान में, पड़ोसी में, अड़ोसी में, इनमें डालो ना थोड़ा। कौन से जान मल जी, बच्चे बच्चे है नहीं, सब खत्म हो गए, और 90 वर्ष की उम्र में कमाए जा रहे, कमाए जा रहे, किसके लिए कमाए जा रहे बोलो कमल जी? धर्म में भी ऐसा हो, कर्म में भी ऐसा है। ये तत्व ज्ञान लेकर हमारी आगामी पीढ़ी तक नहीं जाएगा, हमारी खुद की, तो समझ लो हमारी तरफ से तो खत्म ही हो गया ना। तो साफ कर्म तो निरंतर वो मरते हैं संतान को, उनकी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अपने समय पे उदय आएंगे, अपना फल देंगे और खिर जाएंगे और खेल खत्म। और तुम उदय के समय के पहले उदय में ला नहीं सकते, उन्हें खिला नहीं सकते, उसमें तुम्हें माथा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हम सारा माथा वही मार रहे हैं, अकेले मुरली कर्म में है। तो मुरली कर्म में भी एक कर्म है कि पहले मिथ्या पी जाता है, फिर अवर पी जाती है, फिर प्रमाद जाती है, फिर कसाय जाती है, ये चारों मुरली कर्म ही। चारों मोहिनी कर्म के है ना, इसलिए अगर बंद कोई नहीं। अब उन तीन का जो बंद है, जो तीन के फल में जो बंद होता है, वो तो मिथ्यात्व का जो बंद है, उसे रोके बिना वो तीन किसी कीमत पर रुक नहीं सकते। ये नियम है, पहले मिथ्यात्व छूटे तो बाकी के कैसा आदि मिटे और उनका बंद रुके। और हम बस क्या करें, बस समझ आराम, अपने मन को संभालो, वचन को संभालो, काय को संभालो, कैसे समझेंगे, योगा करो। अब योग से योगा हो गया ना, और फिर कसाय छोड़ो, क्योंकि बंद का कारण तो कसाय है। और मिथ्या तो छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो बंद का कारण ही नहीं है। अब जो गो बाप बैठा है उसे तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके बिना कसाय छूटनी नहीं है, क्या होगा? सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, सबसे पहले नहीं, बस पहले कह लो चाहे बाद में, बाकी काम तो सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया से हो जाने वाला है। तो एकमात्र बंद का कारण है, क्यों? उस दिशा में हमें प्रयत्न करना चाहिए, और उसका फल जो परम एकत्व महत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि है, और वो हमारी जैसे टूटे वैसे हमारा काम हो। उन्होंने इतनी कह दी पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित, इसका क्या अर्थ हो गया? ये पुद्गल कर्म के प्रदेशों का अर्थ है अनेकान। तो ये जो हमको संयोग मिले हैं, इनमें मिथ्यात्व के कारण इनमें अपनापन स्थापित करना, इनमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, ना इन्हें छोड़ सकते हैं और ना इन्हें रख सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ भावना भाई, चाहे लाखों वर्षों तक जीव, चाहे मृत्यु आज ही आ जा रही, इसके लिए तो ऐसा होना चाहिए ना, मुझे मरने की इच्छा है और ना जीने की इच्छा है। शरीर जाए तो बहुत खुशी, और रहे तो उससे ज्यादा खुशी, और जाए तो उससे ज्यादा खुशी। मैंने गुरुदेव श्री की परिणति में ये बात देखी अपनी आंखों से। हम लोग जाते थे, कितना हमसे बात्सल्य रखते थे, कल्पना के बाहर किसी को इतना अपने गुरु का प्रेम प्राप्त हुआ हो, आप लोग बहुत जानते हैं। लेकिन हम गए महाराज, आज जा रहे हैं सर, ठीक है। इन्हें कहा कि 2 दिन और रुक जाओ, क्यों जा रहे? कल जाओ तो बहुत बढ़िया, रहो तो बहुत बढ़िया। तो महाराज फिर तो हमने विचार बदल दिया, कहा कि और 8 दिन रह करके बहुत बढ़िया प्रकरण चल रहा है, तो सुन के जाएं कि बहुत अच्छा किया। देखा कि नहीं नहीं फिर वहां से बहुत फोन तार आ रहे हैं तो जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, क्या लेना देना, रहो तो तुम्हारा, नहीं रहो तो तुम्हारा, हमें क्या लेना देना। ये संयोगों का तो ऐसा है, न तुम्हारे कहने से रुकने वाले हैं न जाने वाले हैं। गुरुदेव कहते भी रुक जाओ तो भी रुकने वाला था, और किसी धक्का मार के भगाते तो भागने वाला था, क्यों तो आत्मार्थी होता। तो ये आप साफ कर्म करो तो सिर्फ अपने आएंगे चले जाएंगे, नहीं क्या करना है इनका। तो कहते हैं इनमें से एकत्व तो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, वो सिर्फ दर्शन भूमि कर्म माने मिथ्यात्व के उदय से होता है। इसलिए इसका नाम है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, और इसे बोलते हैं परसमय माने मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी संसारी संसार में रखने वाला। और फिर कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्र के में स्थित उसका नाम स्वसमय है, लिखा ना, वहां तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में था, तो यहां उल्टे में ये कहते थे कि आत्मा के प्रदेशों में। यहां दर्शन ज्ञान चारित्र क्यों कहा, इसका मतलब ये हुआ कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित नहीं होने का नाम दर्शन ज्ञान चारित्र है। और यदि उनका नहीं होना दर्शन ज्ञान चारित्र है तो उसका अर्थ ये हो गया कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र में स्थित होना वो परसमय है, और संबंध ज्ञान चारित्र में स्थित होना वो स्वसमय है। हो गया ना अर्थ, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित का अर्थ क्या हुआ। अब किस लेन से मत निकालो, आप कहां से निकालो, नीचे की लेन से निकालो। क्या देते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित यदि आत्मा का स्वसमय है तो उसका मतलब है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित आत्मा पर समय है, सीधे सत्ता तो हिसाब है। तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना माने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना माने पर पदार्थों जो जो भी संयोग मिले हैं उनमें एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करना, और लागादि भावों में भी, क्योंकि वो भी कर्म के उदय से मिले हैं। ख्याल ना, तो इन्होंने बिल्कुल दूसरी गाथा में ये कह दिया कि भैया इसे स्वसमय कहते हैं उसे परसमय कहते हैं, कि महाराज तुमने समय तो समझाया नहीं है और स्वसमय परसमय समझाने लग गए। यदि तुम समय तो समझाओ कि यही तो कह रहे हैं कि जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम स्वसमय है वो समय है, समझे ना, और जिसमें परायापन स्थापित करने का नाम पर समय है वो आत्मा है, वो समय है, और क्या है। तो उन्होंने फिर आकर आगे जाके प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त भगवान आत्मा समझाऊंगा। प्रतिज्ञा की आचार्य कुंद कुंद ने पांचवी गाथा में, उन्होंने कहा दुनियादारी लोगों ने विषय भोग की गाथाएं तो बहुत सुनी है, उस गाथा को मैं लंबाना नहीं चाहता हूँ, क्या सुना है आपने। लेकिन वो कहते हैं मैं आज तुमको ऐसी बात सुनाऊंगा कि बेटा जो तुमने आज तक नहीं सुनी, क्यों यदि कोई आदमी ऐसा कहे मैं कहूँ यहाँ आकर के कि मैं उदयपुर में आकर के आपको ऐसी बात सुनाऊंगा जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी, तो कैसा अभिमानी पंडित है क्यों, और हम बेवकूफ है, हम तो 40-40 साल तक गुरुदेव के पास जा जाके सुन के आए हैं, ये क्या सुनाएगा। तो उस वक्त भी ऐसे लोग तो होंगे ना जो कुंद कुंद से कह सकते हैं कि कितनी अभिमान की बात कह रहे हैं कि मैं वो सुनाऊंगा। भैया तुमने आज तक नहीं सुनी ऐसा कह के मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता हूँ, जिनने सुनी है समझी है मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ, मनोकारण तो मैंने पहले ही पढ़ लिया है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ जिनने नहीं सुनी मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ, अब सुन करके भी नहीं सुनी जैसी है, अरे उनकी अत्यंत करुणा की बात है ये, और वो तुम्हारे चित्त में एक उत्सुकता पैदा करने की बात है, तुम्हें एक प्रेरणा देने की बात है कि मैं तुम्हें यहाँ एक था राजा एक थी रानी और दोनों मर गए खत्म कहानी ये सुनाने नहीं आया। वो ये कहना चाहते हैं मैं तुम्हें कोई अद्भुत बात सुनाऊंगा, ऐसी बात सुनाऊंगा कि जिससे संबंध से ज्ञान प्राप्ति की प्राप्ति होती है। तो कहा ना विपिन ने तुम जब जाओ तो संबंध लेके जाना, ऐसा लगता है सम्मा लसन बट रहा हो यहाँ पर। तुमने फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हें एकत्वत, मुझे एकत्वत क्यों करे? इस आत्मा के साथ उन्होंने एकत्व विभक्त विशेषण लगाया, मैं ऐसा आत्मा समझाऊंगा जो एकत्व विभक्त। अरे शुद्ध आत्मा कहते, परमात्मा कहते, परम पावना में भाव वाला आत्मा कहते, क्यों? ठीक है, तो वो कहते हैं एकत्व विभक्त माने पर से जुदा और अपने में अखंड, क्योंकि इसमें दो तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। देश की सुरक्षा में दो तरह से खतरे पैदा होते हैं, एक तो हमारी बॉर्डर है ना चारों तरफ, और उसके चारों तरफ वो दूसरे देश हैं जो कोई हमारा कोई जमीन पे कब्जा ना कर लें। तो एक रक्षा तो हमें वो करनी है चारों तरफ से बाहर से कि वो हमारे अंदर ना घुस जाए, और दूसरी यह है कि हमारे जो 20 प्रांत हैं, तीसरे कितने हैं ये तो सुबह ना मालूम कितने हो गए। पहले हमने 27 प्रांत ये 16 किए थे क्यों ना, और फिर बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ गए, जो भी है 20 से 30 के बीच में। हरेक कहता हमें स्वतंत्र राज्य चाहिए, कश्मीर कहता हमें चाहिए, पंजाब कहता हमें चाहिए, तो पूरब वाले कहते हैं हमें चाहिए, क्यों? दक्षिण वाले कहते हैं हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो ये देश के अंदर के टुकड़े ना हो जाएं, दो खतरे हैं। तो ऐसे ही भगवान आत्मा को दो खतरे हैं, एक तो जिस स्त्री पुत्र मकान राजा शरीर राग देश जो भी परिणाम आत्मा से बाही है वे आत्मा की सीमा में घुस ना जाए, और एक है जो अखंड अनंत गुण है असंख्य प्रदेश है वे टूट टूट के बिखर ना जाए, ख्याल में है ना? तो इसलिए एक व्यवहार है संयोग वाला व्यवहार और एक है भेद व्यवहार। तो भेद व्यवहार का भी निषेध करके, भेद व्यवहार का निषेध माने एकत्व और अभेद संयोग के व्यवहार का निषेध माने विभक्त। मैं दोनों चारों प्रकार के व्यवहार का निषेध 11वीं गाथा में जाके कर दिया ना, मैं 11वीं तक की बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे 12वीं शुरू करनी है। एकत्र हो भगवान आत्मा को समझाऊंगा कि जिसमें पर का रंत मात्र भी प्रवेश नहीं है और अपने में बिल्कुल अखंडता है तो किसी कीमत पर टूटने वाले नहीं है। पर का प्रवेश नहीं है माने क्या? ये तो वस्तु के स्वरूप में है, क्योंकि एक द्रव्य के और दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है तो वे कभी प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए तेरे को उसकी क्या फिक्र करना, क्यों फिक्र करने की जरूरत तो नहीं है ना? तो कह रहे बात तो बिल्कुल आप पक्की कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो ये हमें पता नहीं है ना, तो पता नहीं है तो हमने उन्हें अपना मान लिया, वो जो प्रवेश हो गया क्या। एक वकील साहब अदालत जा रहे थे तो रास्ते में कुत्ता भौंक रहा था, जोर जोर से काटने के लिए हंगला था, वकील साहब भाग रहे थे, तो एक आदमी बोला कि वकील साहब आप क्यों भागते हो, ये कुत्ता यदि आपको काट लेगा तो इसे गोली से उड़ा दिया जाएगा, फांसी की सजा मिलेगी, इसकी आजादी लेकर इस निर्णय में बंद कर दिया जाएगा, क्यों पागल हो जाए तो पतलेना बंद कर देते कि नहीं बंद करते, ज्यादा गड़बड़ कर तो गोली से मार देते, आप क्यों डरते हो? बोले बात तो आप सही कह रहे हो लेकिन ये बात कुत्ते को पता नहीं। बाद में तो होगा तो हो जाएगा कुत्ते का, अभी तो मुझे काट ही खाएगा ना। ये बात समझाना है तो कुत्ते को समझाओ। तो दो द्रव्यों के बीच में तो वज्र की दीवार है, उन्हें क्यों समझाए? तो तुमने मान्यता घुस गई है कि मैं इसका करता और ये मेरा करता, इसने मेरा भला किया और मेरे तुमको बुरा किया, तो तुम्हें जो पागल कुत्ते ने काटा है हमें तो तुम्हारा इलाज करना है। हमारी समस्या वो नहीं है कि कोई घुस ना जाए, کہ پاکستان 10-5 گاؤں ہمارے دبا نہ لے, وہ تو سمبھو ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں ہی بھول جائیں گے کہ ہمارا گاؤں ہے کہ پاکستان کا گاؤں ہے. کیوں ہمیں ہی بھول جائیں گے کہ ہماری وسطو ہے کہ تمہاری وسطو ہے, اور تمہاری کو ہم اپنی مان لیں, ہم اپنی کو اپنی تمہاری مان لیں تو کیا ہوگا, بولیے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری سمسیا یہ نہیں ہے کہ پر دوسرے میں گھس جائے گا, لیکن یہ ایک جیو نے پر میں اپناپن کیا ہے, پر کا سوامی بنا ہے اپنی مانتا میں, پر کا کرتا بھوکتا بنا ہے. تو ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ تم ان کا سوامی نہیں ہے, ان کا کرتا بھوکتا نہیں ہے, یہ تم نہیں ہے. اس کا نام ہے ہم تمہیں وبھکت آتما کو سمجھائیں گے. اور آتما کے انت پردیش ہے, وہ تو کبھی اسنگ پردیش ہیں, وہ تو کبھی الگ الگ ہونے والے نہیں ہیں کہ ہو جائیں گے. کبھی کشمیر الگ ہو جائے تو ارے صاحب کیا بات کرتے ہو, بھارت کا مستک کٹ جائے گا. وہ تو بھارت ماں کا مستک ہے, تو اپن فوٹو بنا دیتے ہیں نا. کیوں کہ بھیا یہ آتما میں سے ایک بھی پردیش کبھی بھی کھنڈت ہونے والا نہیں ہے. کیوں آپ جانتے ہیں نا کہ جو ہوتی ہے نا چھپکلی, کبھی کبھی اس کی پونچھ کٹ جاتی ہے اور وہ بہت دیر تک تڑپتی رہتی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی, اور پھر وہ مر جاتی ہے. تو ایک اس آتما کے جو پردیش ہیں وہ تڑپتے کب تک؟ کیوں کہ جب تک وہ پردیش اس میں رہتے ہیں اور اس میں بھی دونوں میں, تو دونوں زندہ رہتے ہیں. تو یہ نیم ہے کہ وہ بیچ کا جتنا فاصلہ ہے اس میں بھی وہ آتما کے پردیش کنٹینیوشن میں ہیں, وہ پردیشوں کے دو ٹکڑے نہیں ہوئے ہیں. سب کلی کے شریر کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ بعد میں وہ آتما کے پردیش آتما سوچتا ہے کہ بھائی میں اب کہاں بچ سکتا ہوں, اب میں سب پردیش اس میں جاؤں گا, اس میں اب دو میں پردیش نہیں سکتا ہوں, دو تو یہ الگ الگ ہو گئے. جو بڑا حصہ ہوتا ہے اس میں وہ آ جاتے ہیں اور چھوٹے حصے میں سے نکل جاتے ہیں, اس لیے اسے مر گیا اپن کہتے ہیں. یہی ہوتا ہے. اور پھر یہ برابر لے کے جلدی جوڑ دیں اور ڈاکٹر لوگ تو کہتے ہیں جڑ گیا. کیوں جب تک پردیشوں کا تارتم ہے, کچرے کو تھوڑی جوڑا ہم نے, جڑے کو جوڑا. تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ کچھ کٹ نہیں سکتا ہے, لیکن ہماری مانتا میں یعنی ایسا آ جائے ہم جدے اور تم جدے, پردیش بھید یا گن بھید, انت گن کبھی کبھی بکھر کے الگ ہونے ہی والے نہیں ہیں, کیونکہ ان میں ایک گن ایسا ہے کہ جو انہیں انت کال تک کے لیے باندھ کے رکھتا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ اگر لگت گن ہے نا, کہ سارے گن بکھر نہ جائیں, انتظام ہے اس میں, تو تمہاری ضرورت تو نہیں ہے. لیکن تمہیں یہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ تمہیں ڈر لگتا ہے کہ بکھر نہ جائیں. کیوں یہ ہم جتنا گرودیو کے انائی سستے ہیں نا بہت شروع, تو یہ بکھر نہ جائیں, بکھر نہ جائیں کیسے بکھر سکتے؟ کیونکہ انہیں تتو گیان کا جو گرودیو سنگھ نے بتایا ہے, اور بھگوان مہاویر کی بان دیو دھنی کا سار ہے, وہ سب کو وہ مان ہے. اور وہ ایک اتنا بڑی رشتے داری ہے کہ وہ تم سو ہزار قدم کر کے بھی ٹوٹ نہیں سکتی ہے. کہ دو جگہ دخل لگیں گے تو دخل لگیں گے, لیکن اس میں ایکتا کا بھنگ نہیں. وہاں وہ سمے سار پڑیں گے, یہاں بھی یہ سمے سار پڑیں گے. کیوں بھائی یہاں یہاں کا سمے سار پڑیں گے, وہاں وہاں کا سمے سار پڑیں گے, کہاں کا؟ کیوں کنڈ کنڈ کا کوئی نہیں پڑے گا, امرتن کا نہیں پڑے گا, کس کا پڑے گا؟ سمجھ رہا ہے؟ کیسے ٹوٹ سکتی کہ تمہارے جوڑے رکھنے سے تھوڑی جڑی ہے, یہ تو پرکرتی سے جڑی ہے. یہ تو دو بھائی ہیں سگے, سننا, ان میں کتنا ہی دیش ہو جائے تو بھائی مٹ جائیں گے. تم نقاب کر کے جوڑا ہے بھائی کا رشتہ, وہ تو پرکرتی سے جوڑا ہے. اور دوسرے سے ہم کسی کو بھائی بنا لیں گے تو کتنا بنا لیں, کتنا ہی راس کریں گے تو وہ بن جائے گا. چل بہت پہلے میں ایک ادھارن دیا کرتا تھا اس بات کو سمجھانے کے لیے, شاید بہت دنوں سے نہیں دیا میں نے, کہ ہمارے بندیل کھنڈ میں گجرس پنت کلیانک چھوتے ہیں نا, تو پنت کلیانک کے بعد میں گجرس چلتا ہے, ہاتھیوں کا رس چلتا ہے, اور جو گجرس چلاتا ہے اس کو سنگھی کی پدوی دی جاتی ہے. یہ جتنے سنگھی ہیں نا بندیل کھنڈ میں, انہوں نے وہ گجرس چلائے تھے اس لیے ہیں. ارے نیم ہے, ایک گجرس چلائے تو سنگھی, دو قدر چلائے تو سوائی سری، پھر تیسری بار چلائے تو سیٹ، پھر چوتھی بار چلائے تو سواری سیٹ، پھر پانچویں بار چلائے تو سریمنت سیٹ. یہ جو بندر خان میں سریمنت سیٹ ہے کھڑے والے، یہ پانچ گیدر چلائے تھے اس لیے سریمنت سیٹ ہیں، ایسے مفدیا نہیں ہے، ایسا نیم ہے وہاں کا. اب میرا ادھارن کیا ہے کہ دیکھو گدرت کی پھیری پھرتی ہے، مان لو ایک بھائی نے گدرت چلایا تو اس کا سارا پریوار سنگھی ہو جاتا ہے، سمجھے نا، ہو جاتا. اب دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہے، اپنے بھائی کو اس نے سگے بھائی کو بلایا نہیں، اور وہ بلاتا تو وہ آتا نہیں، بنا بلایا آنے کا تو سوال ہی نہیں تھا، تو کیوں نہیں بلایا، آگے میں بلاتا تو بھی نہیں آتا، اس لیے نہیں بلایا. اتنا دیش ہے، سمجھ گیا نا. اور سالہ دو مہینہ سے آ کر کے گھر میں بیٹھا ہے، سارا کام وہی سنبھال رہا ہے کیوں؟ اور گد رتھ میں بھی ساتھ میں بیٹھا ہے، وہ رتھ میں پھیری میں، پھر بھی وہ دور بیٹھا بھائی سنگھئی بن جائے گا اور بغل میں بیٹھا سالہ سنگھئی نہیں بنے گا. تم نے کتنا راج کیا اسے، تمہارا بنا ہو کیوں؟ اور تم نے اس سے کتنا دیش کیا وہ تمہارا مٹا، تمہاری طاقت ہے اسے سنگھئی بننے سے روکنے میں. تو تمہارے یہاں کوئی مر جائے تو اسے یہاں سوتک لگے گا کوئی روک سکتا ہے؟ کہ تمہارا بنایا تھوڑی ہے. معلوم فلٹن میں ایک سبھا ہوئی تھی جس میں کانڈی سوامی کو غیر دگمبر گھوشت کر دیا گیا تھا، ہے نا. تو سوامی جی کے پاس جب یہ سماچار پہنچا، ہم سب وہیں تھے، تو انہوں نے چھوٹتے ہی کہا، بھیا ہمیں کسی نے دگمبر بنایا تھا کیا؟ یعنی ہمیں کوئی دگمبر بناتا تو وہ ہمیں غیر دگمبر بنا ہم سے چھین سکتا تھا. بھاگی کی بات، ان نے بھی یہی ترک دیا تھا کہ ان نے یعنی دگمبر بنے ہیں تو ان نے کن سے دیکھا لی. سمجھ میں نا، دگمبر دگمبر دھرم میں بننا ہے تو یا تو دگمبر ماں باپ سے پیدا ہو، اور نہیں تو اسے بعد میں کسی سے جو دیتے ہیں ان سے لینا پڑے گا دگمبر بننے کے لیے، خیال نہیں نا. تو ان کے دماغ میں یہ تھا کہ دگمبر کسی سے نہیں بنی، پھر دگمبر بنے ہی نہیں، تو بنے ہی نہیں تو تم نے غیر دگمبر کیسے بنا؟ وہ بھی یہی کہہ رہے، ہم اپنی شردھا کے کارن بنے ہیں، اسے کون روک سکتا ہے؟ اور ہم جس طرح مٹیں گے وہ اپنی شردھا کے کارن مٹیں گے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹ سکتی ہے. تو ایسا آتما کا تو کوئی گڑبڑ کر نہیں سکتا ہے، لیکن آتما کو غلط مانا جا سکتا ہے، جانا جا سکتا ہے. تو ماننے والا شردھا اور جاننے والا جان جھوٹا ہوگا، کہنے والی بانی جھوٹی ہوگی، خیال میں آئی نا. تو ایکت جو کھنڈ کبھی نہیں ہونے والا ہے، اس کو بھن بھن مان کر جس میں مانتا میں کھنڈت ہوا ہے، اس کی مانتا سدھارنے کے لیے ہم یہ بات کہتے ہیں. سمندر بدر آچاری نے ایک بات کہی بہت مارمک، کسی نے ان سے پرشن کیا کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایشور جگت کا کرتا ہے یا نہیں، سمجھ گئے. اب سو تو سب تو انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا سمندر بدر آچاری نے. اب میں اور ذرا خلاصہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یدی تم ایسا کہو کہ ایشور جگت کا کرتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہے، تو اس کا کھنڈن تم کیوں کرتے ہو؟ سچی بات کا کھنڈن کرو تو تمہیں جھوٹے ہو جاؤ گے نا. یدی تم کہو گے کہ نہیں ہے، تو کوئی جگت کا کرتا ایشور اس لوک میں ہے ہی نہیں، تو تم کھنڈن کس کا کرتے ہو؟ جگہ کس ہی کا کھنڈن کیا جاتا ہے؟ کیا پرشن کیا سامنے پر الگ ایک پرشن ہے اتر نہیں کہ یہ ایشور جگت کا کرتا ہے یا نہیں، ہم تم سے پوچھتے ہیں، اور یدی تم ہو کہو گے، وہ خود ہی پرشن کرنے والا کہہ رہا ہے، تو ہم یہ جواب دیں گے کہ تم ہے تو تم کھنڈن کیوں کرتے ہو، یا جو ہے اس کا کھنڈن کیوں کرتے ہو؟ یدی نہیں ہے تو پھر کھنڈن کیوں کہتے ہو؟ ہے نہیں ہے تو کھنڈن کس کا کرتے ہو؟ तो सुमंत भद्र ने कहा कि हम ऐसा मानते हैं, सुनना, जैन धर्म ऐसा मानता है कि ईश्वर जगत का कर्ता कथनचित है और कथनचित नहीं है। क्या कह रहे? ईश्वर जगत का कर्ता है कथनचित, ऐसा जैन धर्म मानता है। किसने बुलाया इस पंडित को? अरे इस पंडित को भगाओगे तो सुमंत भद्र को भगाना पड़ेगा, क्योंकि तो उसकी बात बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जगत में ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए तो हम उसका मतलब आप समझे ना, इसलिए समझे। और लेकिन कुछ अज्ञानियों की मान्यता में है, तो जो कथनचित है माने वास्तव में तो नहीं है, एक कथनचित नहीं है हो गया, और कुछ अज्ञानियों की मान्यता में है एक कथनचित है हो गया, इसको भी कथनचित है मानते हैं जैन धर्म में। और हम अज्ञानियों की उस मान्यता का खंडन करते हैं, हम ईश्वर का खंडन नहीं करते, क्योंकि वो तो है ही नहीं। इन अज्ञानियों की मान्यता में तो है ना, ऐसा मिथ्या दर्शन अज्ञानियों की मान्यता में है, क्योंकि एक दिन दूसरे का कर्ता वस्तु स्थिति में तो है ही नहीं, लेकिन अज्ञानियों की मान्यता में है। और वो इतना जबरदस्त है, वो भी तुम ऐसा मत समझना कि वो साधारण है, कि वो मान्यता वाला माने एक्चुअल में नहीं, वो मान्यता वाला मिथ्यात्व, मान्यता वाला दोष, कर्तापन इतना अधिक खतरनाक है कि हाँ, अरे इतना खतरनाक है कि अनादिकाल से उसी वजह से हमें संसार में रखा जाए और आनंद दुख उठा रहे, जिसको हमें समझता वो है ही नहीं, वो है ही नहीं वाला है कितना खतरनाक है। समझना है कि नहीं है? जिसकी जगत में सत्ता नहीं है उसके चक्कर में ये दुनिया कितनी पड़ रही है। नाराज मत हो जाना, ये मंत्र जंतर कितनी कितनी चीजें चलती है ना समाज में, ये बिल्कुल कुछ नहीं है, ये कुछ होता नहीं है, आज तक लिया कुछ हुआ नहीं है, किसी का जुकाम तक ठीक नहीं हुआ, आप समझे, और फिर भी कितना मार्केट चल रहा है। अब हम हिंदुस्तानी लोग अंधविश्वासी हैं इसलिए चलता होगा, पूछे पारसमल जी से, अमेरिका का टीवी खोल के देखते हैं हम तो अजमेरी बाबा और कौन दो तीन के इतने विज्ञापन आते हैं, हाँ पीर सही है, इतने विज्ञापन आते हैं तो उन विज्ञापनों को करोड़ों करोड़ों नहीं अरबों रुपया विज्ञापन में देते हैं, कितनी कमाई होगी, कितने लोग फंसते होंगे उनके पास। हम तो दो चैनल खोले हैं, उसमें पीर बाबा खड़े हैं, उसमें अजमेरी बाबा खड़े हैं, खेलना लैन लग रही है, इस गांव में, लंदन में जाओ तो लंदन में, अमेरिका में जाओ तो अमेरिका के, हर शहर में, हर टीवी पे वही वही देखने को मिलता है। मैंने जोर नहीं है वो कितना खतरनाक है, होता तो क्या होता, समझ गए? देखो एक कमरे में एक लड़का बंद है और दरवाजे पर एक रस्सी लटक रही है, ये सब राजवार्तिक में उदाहरण दिया है, रस्सी लटक रही है, अब उसको ये भ्रम हो गया कि ये सांप है, अंधेरा है, बाहर निकलना है, और रज्जू में सर्प का भ्रम हो गया, अब वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, बाहर निकल जाएगा कि नहीं सांप है, काट जाएगा, मार खा जाएगा, है तो रस्सी, क्यों असली सांप कितना खतरनाक होगा, रस्सी का सांप जब इतना दुख देता है, मेरा एक प्रसिद्ध उदाहरण है, वो कौन सा, एक बकरा एक कमरे में बंद है और एक में शेर बंद है और बीच में एक बजरी दीवाल है जो तो बिल्कुल पारदर्शी है, दिखाई देती ही नहीं है कि दीवाल है कि नहीं है, क्यों? और वो शेर बकरे पर एकदम टूटता है, उसे मार नहीं सकता क्योंकि बजरी दीवाल है, खुद ही घायल हो जाने वाला हो भी जाता है तो भी बकरा मर जाता है, क्यों? बोलो बकरा उस शेर ने मारा कि नहीं? अब वो अपने भय से अपने अज्ञान से मरा, तो उसको ही इस जगत में शेर ने मारा ऐसा कहते हैं, शेर का आरोप जाता है, ऐसा हमने आज तक परिद्रव्य में कुछ भी नहीं किया है, फिर भी करने का विकल्प किया, करने की मान्यता की, इसको ही पर में किया कहा जाता है और उसका फल अनंत संसार से आज तक संसार में रखना है, हम तुमको ऐसे आत्मा को समझाना चाहते हैं कि तुमने परदेव का कुछ किया ही नहीं विभक्त, और अपने में टूटने का कोई खतरा नहीं है। राधा कृष्ण ने, राधा कृष्ण का नाम तो सुना होगा ना, डॉक्टर राधा कृष्ण जो अपने उपराष्ट्रपति थे फिर राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात लिखी है ना, भारतीय दर्शन उनकी किताब है, इंडियन फिलोसफी के नाम से उनकी बड़ी बड़ी किताबें लिखी है उन्होंने, तो उन्होंने उसमें लिखा कि भारत में इतनी मजबूत अखंडता है कि दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती है। तो क्या उदाहरण दिया कि एक रेलवे स्टेशन पर जाओ, एक डब्बे में क्या प्लेटफॉर्म पर 20 प्रांत के 20 आदमी मिल जाएंगे, एक पंजाबी पगड़ी बांधे होगा, एक लुंगी लगाए होगा दक्षिण भारत का, बिल्कुल 20 तरह के आदमी एक प्लेटफॉर्म पर बैठे मिल जाएंगे और राम 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 जप रहे होंगे। ये राम ऐसा घुस गया है सबने क्या, और ये लोग कहते काल्पनिक है, काल्पनिक ही सही है, कितनी मजबूती से घुसा हुआ है उसके बारे में कुछ बोल के तो देखो तुम्हारी खज्जे खड़ी हो जाएगी। क्यों पंडित हम सिंह तुम्हें जो करना है तो कर डालो, इधर तो राम के बारे में बोल के देखो, पहले उसने मद्रास वाले ने बोला था, फिर उसने बंगाल वाले ने बोला, क्या हुई उनकी दुर्दशा। तो है कि नहीं है मैं पूछता हूँ, अरे इतिहास का नहीं है, पुराण का नहीं है, अरे कोई नहीं होगा ख्याल में है ना, वो तो कितना बड़ा है, वो है कि जो बात है। उसने क्या लिखा कि एक रेलवे स्टेशन पर ये यूनिटी है, फिर उसने लिखा दूसरी कि एक घर में जाना, उस घर के बुड्ढे चौपाल में बैठकर 10-5 बुड्ढे इकट्ठे होकर आज के बच्चों को खूब गालियां देंगे, जमाना बिगड़ गया है, लड़के बिगड़ गए हैं, ऐसे हो गए हैं, नालायक हो गए हैं, है ना। दूसरी पीले बाड़ी बैठे होंगे ना, तो अपने बाप को भी कोस रहे होंगे और बेटों को भी कोस रहे होंगे, और तीसरी पीली बाड़ी बैठे होकर उन दोनों को कोस रहे होंगे, मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे हर गांव गांव में। लेकिन एक घर में जाके देखो फिर मजा आता है कि क्या, एक एक खूंटी है, उसी खूंटी पर एक पगड़ी टंग रही, उसी खूंटी पर टोपी टंग रही, उसी खूंटी पर टाई टंग रही, ये क्या है। यदि ये सब ना लगे तो निकाल के अलग अलग बाहर करो बस, देखिए घर में तीनों तीनों घुसे। और ये मत समझना कि भी उससे घृणा करते, देख टाई दादाजी खरीद के लाए हैं और दादाजी पगड़ी पोता खरीद के लाया है, समझ गए ना। और इससे और ज्यादा देखना है, यदि दादाजी टाई लगा के आ जाए तो पोता कहे नहीं दादाजी ये नहीं करा, ये नहीं करा, मेरे शर्म लगती है उतारो क्यों, और पोता पगड़ी लगा के आ जाए तो दादा पगड़ी फेंक देगा नहीं नहीं, वो चाहता है कि ये ऐसा ही रहे, क्यों इन बच्चों की छोड़ दो, बड़े बड़े बच्चों की, ये 2 वर्ष के बच्चे 3 वर्ष के बच्चों को, उन्हें तो बेचारे जो कपड़ा आप ले आओ पहना दो, वही पहन लेते हैं कि नहीं पहन लेते हैं, लेकिन तुम कैसे लाते हो उन्हें, कैसे कैसे लाए कपड़े पहनाते हो उन्हें। माने ये अंदर की यूनिटी का उदाहरण दिया उन्हें, एक दूसरे की आलोचना करते मिल जाए उसे न समझना कि इनमें भेद है, इनमें झगड़ा है। एक छोटा सा उदाहरण और देखो कि एक महिलाओं की मीटिंग हो रही थी, महिलाएं रह गई ना बिल्कुल बिचारी सूखी, मीटिंग हो रही थी और मीटिंग में एक तय हुआ था कि हमें नारी जाति के साथ बहुत अन्याय हुआ है आज तक और उसके विरुद्ध हमको मोर्चा बनाना है, तो सब लोग भागने की तैयारी कर करके महिलाएं लाई थी और बहुत जोरदार पुरुषों के विरुद्ध भाषण दिए, ख्याल में आया ना, वे भाषण लिखे किसने थे उनके पतियों ने लिख लिख के उन्हें दिए थे और जब मीटिंग खत्म हुई उनके विरुद्ध मोर्चा बनने के बाद तो बाहर एक एक स्कूटर लेके एक एक आदमी खड़ा था और वो एक एक महिला उसके साथ एक एक स्कूटर धर के निकल गई, 2 महिलाएं एक साथ नहीं गई। कितने मोर्चे बनाओ, बना लो तोड़ दो इस घर की यूनिटी, पति पत्नी की यूनिटी आप तोड़ सकते हैं? पति सोचता मैं नेता नहीं बन पाया तो मेरी पत्नी बन जाए, तो महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाए 30%, तो मेरी पत्नी को टिकट मिल सकता है, मेरे को ही मिलेगा तू, तो पत्नी को आगे बढ़ा ना? कोई तो आ जाए। मेरे कहने का अर्थ है कि जो एक दूसरे के शत्रु हैं, के मित्र हैं, भैया तुम नहीं समझ सकते हो क्या है वस्तु का स्वरूप। इसने लगा किसने? राधा कृष्णन ने। यूनिटी कितनी जबरदस्त है अंदर अंदर कि दुनिया की हजार ताकतें इसको भी तोड़ सकती हैं। ऐसे ही अनंत गुणों की अखंडता, असंध प्रदेशों की अखंडता इतनी मजबूत है कि दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती है। अनंत जीवों ने उसके विरुद्ध मान्यता की, लेकिन उस मान्यता से जरा भी फर्क पड़ा? बोलो धनसिंह जी, क्या होता है तेरी मान्यता से? वस्तु के स्वरूप में क्या फर्क पड़ता है? तू खूब मानता रहे कि नींबू मीठा होता है, नींबू मीठा होता है, नींबू मीठा होता है, नींबू बदलने को तैयार है। 1,00,000 आदमी एक मत से दिन भर जाप करें, नींबू मीठा हो जाए तो हो जाएगा? क्या होता है तुम्हारे विकल्पों से? इसका नाम जैन दर्शन है। मैं तुमको ऐसा एकत्र वक्त भगवान आत्मा समझाऊंगा। और ये उन्होंने प्रतिज्ञा की और उस भगवान आत्मा को उन्होंने आगे ताजे समझाया।